मैं एक ही कविता पढ़ रहा था आज। ये कविता हमको बचपन में थी, छठवीं में। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले, देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगन तू भरमाया। पक्षी का बच्चा, उस दिन पूर्णिमा बहन उस बारे में कुछ सुना रहे थे। तो छोटा बच्चा जो है वो अपनी माँ से पूछता है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले, देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? तो माँ कहती है, नहीं चुरुंगुन, उसका नाम है चुरुंगुन, तू भरमाया, तुझे भ्रम हुआ है, तू भरमाया है, तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे उड़ना आ गया है, परंतु तुझे उड़ना नहीं आया है। क्या किया उसने? खाली देखा है। अभी घोंसले को छोड़कर वो बाहर आया है, डाले पात सब देखा। आगे, डाली से डाली पर पहुंचा, एक डाली से फिर दूसरी डाली पर पहुंचा, देखी कलिया, देखे फूल, ऊपर उड़कर फुनगी जानी, फुनगी अर्थात टॉप टॉप मोस्ट झाड़ का जो है, नीचे झुककर जाना मूल। पहले खाली देखा था, तब उसने पूछा, क्या माँ मुझे उड़ना आया? उसकी माँ ने कहा, नहीं। अभी डाली से डाली पर पहुंच रहा है, कलिया देखी और फूल देखे, और ऊपर उड़कर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? तो माँ ने क्या कहा? नहीं चुरुंगन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, अब थोड़ा और बड़ा हो गया, उसको पहचान हुई है कच्चे फल कौन से है और पक्के फल कौन से। खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। अब उसके साथी भी बन गए, मित्र भी बन गए, वो मेरी बाट देख रहे। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, एक तरु से दूसरे तरु पर आता, जाता हूं धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूं ठोक ठटोर। कहीं कोई दाना पड़ा हो तो वो अभी देख के अच्छे से दाना भी लेके आता है, ठोक बजाकर इस तरु से उस तरु की ओर जाता है। माँ, झाड़ झाड़ दरख्त, दरख्त बड़ा होता है, तरु छोटा होता है। तो माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अभी और क्या चाहिए? कब कहेगी माँ उसे? पहले तो देखा, फिर उसके बाद में एक डाली से दूसरी डाली पर गया, फिर फल खाए, साथी बनाए, अभी साथी उसकी बाट देख रहे, फिर भी माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, अभी भी ये तेरा भ्रम ही है, तू सोच रहा है तू उड़ सकता है पर उड़ नहीं सकता। आगे, मैं नीले अज्ञात गगन की, अब ये अवस्था आ गई उसकी कि नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार पुकार। अभी उसे कुछ पुकार आने लगी है ऊपर से, नीले अज्ञात गगन की, कोई अंदर से उसको कह रहा है उड़ जा, अंतर्मन की आवाज आ रही है उड़ जा, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा परमार, परमार पर मारते हुए उड़ता जा, पंख मारते हुए। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती है, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया, तेरे जो पंख है आज सफल हो गए, सुफल हो गए, आज सुफल है तेरी काया। हरिवंश राय बच्चन। तो कब व्यक्ति उड़ता है? केवल देखने मात्र से नहीं, यहां वहां जाने से नहीं, जब वो अज्ञात गगन की उसे पुकार सुनाई दे, अनिवार्य पुकार, अनिवार्य पुकार, ऐसी पुकार कि अब वो रोक ही नहीं सकता स्वयं को, उसे उड़ना ही है, तब वो पंछी उड़ता है, तब वो सुफल, अब सुफल है, अभी उसको कोई भ्रम नहीं है, अभी उड़ सकता है। जितने भ्रम है उन भ्रमों से मुक्त होगा आदमी, व्यक्ति, आत्मा, तभी वो उड़ सकता है। ये हम जो, ये सब छोड़ना पड़ेगा, देह के सर्व आकर्षण आज की मुरली से, पदार्थ पदार्थ संबंध और संस्कार, प्रकृति के हलचल के आकर्षण, ये सब जब छोड़ेगी आत्मा तब वो उड़ेगी, तब उसे वो पुकार सुनाई देगी, तभी उड़ सकती है, नहीं तो खाली उसका भ्रम मात्र है। या फिर इसको इस रीति से भी कहा जा सकता, हम जो कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु वो केवल एक डाली से दूसरी डाली, एक तरुवर से दूसरी तरुवर पे जा रहे हैं, खाली पहचाना है अभी, कच्चा फल पक्का फल। तो ये सारी जो बातें हो रही है, ये सबको छोड़ेगी आत्मा। आज सुफल है तेरे देने, आज सुफल है तेरी काया, तब माँ कहेगी हाँ आज तुझको उड़ना आया, अभी ये तेरा भ्रम नहीं है। तो उड़ने की इच्छा, उड़ना, उड़ान भरना, परवाज, उर्दू में जिसे परवाज कहते हैं, परवाज की चाह, उन्मुक्त गगन में उड़ने की चाह, इस धरती के को छोड़कर उड़ने की चाह, धरती के प्रति अब आकर्षण नहीं रहे, तभी आत्मा उड़ सकती है। तो आज बाबा ने शिवानंद भाई कौन सा संगठन देखा? अरे बोलो ना। ब्राह्मणों का संगठन देखा। कौन से ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण, क्या रूप है उनका, क्या रंग है उनका? डबल सेवाधारी है, डबल सर्विसेबल है, डबल नॉलेजफुल है, बहादुर ग्रुप का संगठन है, सेवा के मैदान,
बॉर्डर
सेवा के मैदान में जो बहादुर ग्रुप है उनका संगठन है, शक्ति स्वरूप का संगठन है, और एक संगठन है वरदान, एक मत संगठन। कौन सा संगठन है ये? एक मत संगठन है। इस एक मत संगठन के लिए छह बातें बताइए वरदान में, वो छह चाहिए। सबसे पहला स्नेह, एक दूसरे से स्नेह, परस्पर स्नेह। दूसरा रिगार्ड, एक दूसरे को रिगार्ड देना। तीसरा संतुष्टता, स्वयं भी संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। चौथा स्वयं डिस्टर्ब ना होना और दूसरों को डिस्टर्ब ना करना। पांचवा शुभ भावना और छठवा शुभ कामना। ये छह चीजें अगर होगी तब संगठन का किला मजबूत होगा। खुद डिस्टर्ब ना होना और दूसरों को डिस्टर्ब ना करना, खुद संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, यह है संगठन, शक्तिशाली संगठन, विजय स्वरूप होगा तब। तो बाबा ने एक मत संगठन देखा, बाबा ने शक्ति स्वरूप का संगठन देखा, बाबा ने बहादुर ग्रुप देखा, बाबा ने डबल सेवाधारी, डबल सर्विसेबल, डबल नॉलेजफुल, डबल रिजल्ट देने वाले, जैसे डबल विदेशी है वैसे ये डबल सब कुछ। विश्व के शोकेस में शोपीस का संगठन देखा, बंधन मुक्त का संगठन देखा, जीवन मुक्त का संगठन देखा, बैलेंस रखने वाला संगठन देखा, ऐसा संगठन उसने देखा। और देखते ही क्या हुआ, चिट चैट कन्वर्सेशन, गुफ्तगु कुछ तो हुई। किसने क्या देखा? शिव बाबा ने क्या देखा? ये मेरे माला के, रुद्र माला के मन की। ब्रह्मा ने क्या कहा? ये मेरे बुझाए है। और आगे कौन सी बुझाए? सुन कौन रहा है कि सुना कौन रहा है? फिर कौन सी बुझाए? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। लेफ्टिस्ट जो शब्द है वो वाम मार्ग के लिए कहा जाता है। पॉलिटिक्स, राजनीति में एक लेफ्टिस्ट ग्रुप होता है, विपक्ष दल, उसको भी विपक्ष दल को भी लेफ्टिस्ट कहा जाता है। और दूसरा जो धार्मिक में है वो वाम मार्ग में जो भी है वो सारे लेफ्टिस्ट है। तो लेफ्टिस्ट एक ग्रुप है अलग। तो बाबा वो दूसरा लेफ्टिस्ट अर्थात द्वापर से जो भी है वो सब लेफ्टिस्ट है। हाँ, तो किसको राइट हैंड कहेंगे? जो सच है, जो सत्यवादी है और जो समान है, बाप समान है, ये तीन धारणा की बातें हैं। इसका चार्ट, इसका पोतामेल। हाँ, याद और दान। तो ये ग्रुप, ये पोतामेल, पूछते ही पोतामेल इमर्ज हो गया, वो भी अद्भुत रीति से इमर्ज हो गया। घड़ी के रूप में दो घड़ियां इमर्ज हुई, एक समय की घड़ी और एक पुरुषार्थ के पोतामेल की घड़ी। इस घड़ी में तीन काटे, उस घड़ी में चार काटे थे। जैसे सृष्टि चक्र का, सृष्टि चक्र है उसमें चार भाग है, वैसे इस घड़ी के भी चार भाग है। और एक एक काटे के ऊपर क्या दिख रहा है? पोतामेल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और पोतामेल में क्या देखा? चार सब्जेक्ट, चार भाग, ज्ञान योग धारणा सेवा, उसमें 75% किस में है? ज्ञान और सेवा में। फिर भी ठीक है, ऐसा शब्द आया है, फिर भी ठीक है। और योग और धारणा में बहुत कम है, ऐसा शब्द है। हाँ, फिर भी ठीक है, फिर भी ओके, ज्यादा ठीक नहीं है, फिर भी ठीक है। ये दो सब्जेक्ट में फिर भी ठीक है, दो सब्जेक्ट में। और फिर बाबा ने वहां से जो ऐसा टर्न लिया, घुमाई पूरी मुरली, चालू क्या था और वहां से सीधा ट्रैक चेंज हो गया, पर फिर भी वापस ट्रैक में आ गए बीच में। बाद में क्या कहा? बीच में ही एवर रेडी, ये पोतामेल देखते हुए, समय की घड़ी गति देखते हुए, वैसा ही पुरुषार्थ चल रहा है या उसमें एवर रेडी है? फिर वो वाली बात है, एवर रेडी बनने के लिए क्या? दो बटन, एक बटन विनाश का असली और दूसरा बटन स्मृति का समर्थ बटन। ये दो बटन, ये दो बटन जब तैयार हो जाएंगे तब समाप्ति होगी। तो पहला बटन है विनाश का बटन, विनाश का बटन 1 सेकंड में, और दूसरा है समर्थ संकल्प का बटन, या समर्थ बटन, या स्मृति का समर्थ बटन। कहा? स्मृति बटन दबाया और क्या क्या हो गया? अशरीरी हो गए, सेकंड में अशरीरी। बटन दबाया और क्या हुआ? विश्व कल्याणकारी की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो गए। बटन दबाया और क्या हो गया? साक्षी हो गए, विनाश लीला देख रहे हैं। ये सारा संकल्प ऊपर है, मतलब एक संकल्प है, केवल एक संकल्प ही हमें उस स्वरूप में स्थित करता है। कहने का भाव है कि जो संकल्प करेंगे, क्रोध का संकल्प करेंगे तो 1 सेकंड में क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ का संकल्प लोभ में स्थित करता है, मोह का संकल्प मोह में, काम का संकल्प काम में स्थित करता है। फिर वो सारी घटनाएं होगी जो उन विकारों के अधीन होने से होती है। ये संकल्प है मैं अशरीरी आत्मा हूं तो अशरीरी हो गए, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं तो विश्व कल्याण के भाव जागृत हो गए, मैं साक्षी दृष्टा हूं तो साक्षीपन के सारे भाव जागृत हो जाएंगे। साक्षीपन की अब तक की सुनी हुई सारी बातें, चाहे वो याद हो ना हो, परंतु वो भाव तो प्रकट हो ही जाएगा। भले वो हम कह नहीं पाते, परंतु एक्सप्रेस नहीं कर पाते, परंतु वो भाव उत्पन्न हो जाएंगे मन में। तो मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं साक्षी दृष्टा हूं। और ये होते ही और क्या हो जाएगा? सारे आकर्षण, हाँ, सुख शांति की फरिश्ता स्टेज, सुख शांति की किरणें फैलाओ। और क्या हो जाएगा? ये जो हमने पहले कहा, देह के सर्व आकर्षण जो है, संबंध, पदार्थ, संस्कार, इससे परे हो जाएंगे। प्रकृति के हलचल के आकर्षण जो है, उससे परे हो जाएंगे, फरिश्ता रूप में ऊपर स्थित हो जाएंगे। सारा पुरुषार्थ इन आकर्षणों से मुक्त होने का है। आत्मा को बांधे हुए है, इसके लिए अभी वरदान में था ना, स्मृति स्वभाव और संस्कार, ये तीन चीजें हैं। इनको क्या करो? जला दो, राग बना दो। ये पुराने संस्कार, पुरानी जो स्मृति है, पुराने जो स्वभाव है, पुराने जो संस्कार है, इनको खत्म कर दो। इनको खत्म करोगे फिर भी वो राग, फिर भी वो जैसे वहां भूत कहा जाता है या माया के भूत कहेंगे, तो इनको क्या करो?
भगा दो,
भगा दो,
वर्णन नहीं करो।
इसका वर्णन भी नहीं करो, मतलब पुरानी जो यादें हैं उनका वर्णन भी नहीं करो, पुरानी जो स्मृति या पुराना जो स्वभाव, पुराने जो संस्कार, इनका वर्णन भी नहीं करो, तो इन आकर्षण से आत्मा परे चले जाए। तो क्या हो जाएगा? और क्या कहा आगे? सेनानियों की बात आ गई वहां पर। हाँ, वहां पे डायरेक्टर की जगह अगर कमांडर शब्द होता तो शायद अच्छा होता। और डायरेक्टर बोला ना, बाहुबली, वो तो बाबा ने नहीं बोला ना, वो तो टाइटल दिया है ना हमने, बाबा ने ये थोड़ी बोला आज की मुरली का टाइटल ये है। बाबा ने तो डायरेक्टर ही बोला है, तो उसमें बाबा ने ये दो कंपैरिजन किए वहां पर कि जैसे बाहुबल वाली सेना होती है तो क्या होता है उसमें,
बॉर्डर पे जाने वाले
दो ग्रुप
होते
होते हैं उसमें, एक सामने वाला एक पीछे वाला, एक डायरेक्ट वार करने वाला, युद्ध करने वाला, लड़ाई के मैदान में जो है वो, और दूसरा पालना करने वाला।
पीछे होते
तो ये दो ग्रुप बताए। अभी बाबा के सामने कौन सा, ये विश्व सेवा का ग्रुप है, वे विश्व सेवा का मैदान है, उसमें भी दो, लौकिक और अलौकिक सेवा का मैदान आगे बोला जो, तो ये विश्व सेवा का मैदान है, इसमें भी दो ग्रुप है। पालना करने वाले ग्रुप का ज्यादा वर्णन नहीं किया। जो सामने वाला ग्रुप है, अगर वो ग्रुप, उनमें अगर तीन बातें हो तो हार होगी, शस्त्रहीन, डरपोक, भयभीत है, डरपोक है, घबराया हुआ है, तो हार होगी, और तीसरा कमजोर है, ये तीन और अगर उधर है तो हार होती है, और बैकबोन है डायरेक्टर, हार जीत सामने वाले पर निर्भर है डायरेक्टर की। तो ये जो सेना है इनके शस्त्र कौन से, दो शस्त्र बताए यहाँ पर, सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराना, दूसरा श्रेष्ठ चरित्र से आपका चित्र दिखाना, ये दो शस्त्र है। तो ये भी लड़ाई का एक मैदान है, इसमें भी कुछ सामने वाले हैं, सामना करने वाले हैं, तो सामना करना अर्थात किसी को भी अनुभव करा देना, एक सामना करना अर्थात, और दूसरा श्रेष्ठ चरित्र से चित्र दिखाई दे, सूरत से सीरत दिखाई दे, ये कार्य करना है। फिर बाबा तो वापिस पोता मेल पर आ गए, जो वहां ऊपर छोड़ा था 75%, फिर वो यहाँ वापस आ गए। तो चार है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चार सब्जेक्ट है, ये चार सब्जेक्ट चार अलंकार है, ये चार अलंकार चार सब्जेक्ट जैसे चार भुजाएं हैं, अगर चारों में फुल मार्क्स नहीं है तो अधूरा साक्षात्कार कराओगे, पूर्ण साक्षात्कार नहीं करा सकते। सोचो अगर कोई भक्त है विष्णु का और उसमें विष्णु सामने प्रकट हो जाए, उसको तीन हाथ है, तो क्या हो जाएगा भक्त को? बोलेगा ये डुप्लीकेट है। अच्छा चलो एक हाथ वाला विष्णु प्रकट हो जाए तो, अच्छा चारों में भी कुछ कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिसमें शरीर तो ठीक रहते, हाथ छोटे रहते हैं। हाथ जिसमें छोटे रहते हैं, ऐसे भी कुछ कुछ कंडीशन है, तो बोलेगा घबरा जाएगा, बोलेगा ये क्या आ गया। बाबा ने कहा पूर्ण साक्षात्कार अर्थात पूर्ण साक्षात्कार कराना है तो चारों ही सब्जेक्ट चारों ही पूजाएं पूर्ण चाहिए, अगर एक भी कम तो पूरा साक्षात्कार नहीं करेंगे, वो ज्यादा भयभीत हो जाएगा। अगर एक भुजा वाला विष्णु प्रकट हो जाए, तीन भुजा वाला विष्णु प्रकट हो जाए, चार भुजा वाला चाहिए और अच्छे पूरे हाथ चाहिए, चारों ही अलंकार, शंख चक्र गदा पद्म, शंख अर्थात ज्ञान, चक्र अर्थात स्वदर्शन या योग कहा जा सकता है उसको, पद्म या चक्र, गदा अर्थात धारणा, धारणा मतलब सामने करने की शक्ति या जो भी जोड़ सकते हो, और अंत में कमल अर्थात सेवा में अनासक्त, निर्लिप्त, न्यारा प्यारा। तो शंख चक्र गदा पद्म चार अलंकार, चार सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा, चार अलंकार चार भुजाएं, ये अगर है तो तो ही पूर्ण साक्षात्कार होगा, नहीं तो अधूरा साक्षात्कार कराएंगे आत्मा को, आधा साक्षात्कार, जिससे आत्माएं तृप्त नहीं होगी, प्यासी है बहुत, उन्हें प्यार चाहिए। अभी वरदान था ना, किसकी प्यासी है आत्माएं, भूखी किसकी है, शुद्ध आत्मिक प्रेम, आत्मिक प्रेम की प्यासी, स्नेह मास्टर, जैसे स्नेह के सागर, सागर के पास जाते हो तो शीतलता का अनुभव अनुभव होता है, वैसे ऐसे मास्टर स्नेह का सागर बन जाओ तो जो भी आत्माएं आएंगी उनको अनुभूतियां होगी स्नेह की, क्योंकि वो भूखी है इस समय आत्मिक स्नेह की। तो ये साक्षात्कार भी जैसे उनको अनुभव कराना है कोई ना कोई चीज का, स्नेह का जो भी अनुभव, हाँ उनको अनुभव हो जाएगा, बहुत दिखेगा भी, और उस जो दृष्ट दिखेगा उससे बहुत परम सुख की उसको अनुभूति हो जाएगी। जैसे थोड़ा भी साक्षात्कार हो, जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत भूखा है और उसको एक रोटी मिल जाए तो वो उसका परम भोजन है, जैसे ऐसा भोजन कि इसके ऊपर अभी कुछ है ही नहीं, बस यही है वो, तो इतनी वो प्यासी आत्मा है कि जिसको थोड़ा सा एक झलक भी अगर मिल जाए स्प्लिट सेकंड, तो उसको ऐसा लगेगा कि बस यही सब कुछ है। हाँ तो इस तरह से उसको मतलब परम तृप्ति का अनुभव होगा, महातृप्ति का अनुभव होगा कि बस अब ये हो गया, यही सब कुछ है। तो ये इस तरह से वो साक्षात्कार की बात है। फिर बाबा चार सब्जेक्ट में से दो तो ठीक है, ज्ञान और सेवा, गड़बड़ है दो में, धारणा में और योग में। अभी बाबा ने जो कहा है आज कि ये दो के लिए कुछ धारणाएं चाहिए, ये दो करने के लिए क्या विधि बताई, डबल सेवाधारी बनो, किसके लिए, योग के लिए और धारणा के लिए। अभी सेवा और ज्ञान में तो पास 75, पर अभी इन दो के लिए वो चाहिए,
सेवा।
उल्टा नहीं हो गया थोड़ा चक्रम, जो भी है, पर आधार क्या बताया, डबल सेवा, किसके लिए, वो दो धारण करने के लिए, क्या दो धारण करने के लिए, याद और धारणा। अभी इसका एक ये एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है कि हमारा कर्म योग कैसा है उसी के आधार से हमारा योग रहेगा, मतलब योग का आधार को कर्म बताया है, सेवा, ऐसा उसका अर्थ हो सकता है, एक अर्थ, और बहुत अर्थ लगा सकते हैं पर एक अर्थ थे, क्योंकि आप बाबा कह रहे हैं ये दो बातें कम है, अब उसके लिए डबल सेवाधारी बनो। अब वो डबल सेवा भी कौन सी, आत्मार्थ के निर्वार्थ और शरीर के निर्वार्थ, लौकिक और ईश्वरीय सेवा, वो भी ये दोनों सेवा बाप के डायरेक्शन प्रमाण ही मिली हुई है तुमको, श्रीमद प्रमाण डायरेक्शन प्रमाण मिली हुई है, ये दोनों भी सेवा है, तो इन दोनों सेवा का क्या करो, बैलेंस, तराजू का उदाहरण, कैसे कैसे उदाहरण दे रहा है, पहले घड़ी, फिर वो सेना, फिर अभी तराजू पे आ गया। अगर भाषा को देखो तो कैसी कैसी, मतलब जो जो चीजें निराकार है उनको रूप दे रहा है कोई साकार, जो चीजों का कोई ये नहीं है, जैसे सहन शक्ति निराकार है पर वो उसको रूप देता है, एक जिसको ऐसे हाथ लगा सकते, पाल्पेबल, नाम और रूप, टू गिव टू एयर इन नथिंग अ विजिबल नेम एंड फॉर्म, शेक्सपियर ने एक जगह कवि के बारे में लिखा है, कवि अर्थात वो जो एयर इन नथिंग है, हवा का कुछ है ही नहीं जिसका, नथिंग, उसको वो रूप देता है, एक नाम और रूप देता है कवि, ये कवि की परिभाषा है। तो जैसे ये कौन सा तराजू, कौन सा युद्ध, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं है, कौन सी घड़ी की बात चालू है, कौन से काटे, कौन से इंजेक्शन, कौन सी गोलियां, ये सब अलंकारिक भाषा है, कौन से अलंकार, सब अदृश्य है, और उन अदृश्य एब्स्ट्रैक्ट चीजों को वो ऐसे बात कर रहा है, ऐसे वर्णन कर रहा है जैसे इस जहान की है, जैसे उसको कोई न्यू रूप है, नाम है, इस तरह से। ये बड़ी ऊंची जिसको कहते हैं भाषा शैली है, बहुत ऊंचा, जिसको समझने को कितना समय लगता है कि ये बात किस लिए कही जा रही है, वो समझाने के लिए कही जा रही है, ये घड़ी का क्या महत्व है, घड़ी किस लिए है, वो युद्ध का मैदान में क्यों चले गए बीच में घड़ी छोड़कर, फिर से आ गए इधर तराजू पर। तो बैलेंस, ब्राह्मण जीवन में किस चीज का बैलेंस चाहिए, दो तो आज बता दिए, ईश्वरीय सेवा और लौकिक सेवा, ईश्वरीय जिम्मेदारी और लौकिक जिम्मेदारी, गृहस्थ और ट्रस्टी, और बैलेंस किस किस चीज का चाहिए, बहुत सारी चीजें, कर्म और योग, योग और ज्ञान। दो चीज बताओ, बैलेंस के लिए दो चीजें चाहिए। इस पलड़े में क्या डालना है, इधर क्या डालना है, पढ़ाई और, तो पढ़ाई ज्ञान हो गया, तो ज्ञान और योग, लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई। हाँ, स्व सेवा और विश्व सेवा, स्व पुरुषार्थ विश्व पुरुष, विश्व सेवा का पुरुषार्थ, स्व उद्धार विश्व का उद्धार, स्व परिवर्तन विश्व, सब एक ही कैटेगरी में आ गया लगभग ये सारे, थोड़े अलग। भोजन, अति भोजन, अति कम भोजन, निद्रा और जागरण, ये बहुत जरूरी बैलेंस है। ऐसे नहीं कि बस पुरुषार्थ करना है तो बस जागना ही जागना है और निद्रा को छोड़ दिया, या फिर अति निद्रा, निद्रा गति और ठहराव का बैलेंस, कहाँ रुकना है और कहाँ कितना चलना है, बोलना और मौन, वाचा और मौन, वही हो गया, कम बोलना या मौन रहना या ज्यादा बोलना, इसके बीच में बैलेंस। अंतर्मुखता और बाह्य मुखता, गंभीरता रमणीकता, और भोजन हो गया, जागना हो गया, ये दो तो सबसे मेन है, भोजन और जाग, वो ये वही हो गया, विश्व सेवा, स्व सेवा विश्व सेवा, स्व पुरुषार्थ विश्व, स्व उद्धार विश्व उद्धार। योग और सेवा, कर्म और योग, याद और ज्ञान, योग और ज्ञान, ज्ञान और योग, ये सारे कॉम्बिनेशंस, न्यारापन भी और प्यारापन भी होना, अति न्यारा भी नहीं बन जाना है, अति प्यारा भी नहीं बन जाना है, पर पुरुषार्थ सारा न्यारा बनने का करना है, प्यारा बनने का नहीं। न्यारा जो है वो स्वतः ही प्यारा है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, लव और लॉ का बैलेंस, सोचना और ऐसे नहीं बस सोचते ही अच्छे अच्छा सोच रहे, स्वरूप बन ही नहीं रहे पर उल्टा फिर स्वरूप बन गए तो फिर सोचने की आवश्यकता है और बैलेंस वो तो हो गया ना, आज का लौकिक जिम्मेदारी उसके ऊपर से तो यहाँ पर पहुंचे हम। और हाँ, यही शरीर, आज ही बोला ना आत्मा, शरीर अर्थ और शरीर की निर्वाह अर्थ और आत्मा की निर्वाह अर्थ, ये दो, और क्या बैलेंस हो सकता है, साधन और साधना। हाँ, ये एक अच्छा बैलेंस है, जहाँ बैलेंस है बस वहीं पर सौंदर्य है, ब्यूटी है, परंतु मनुष्य का मन अति में डोलता है ये स्वभाव उसका है कि अति में जाने का उसका स्वभाव है, कोई भी एक चीज को वो बैलेंस रख के ज्यादा समय नहीं करता है, इधर ना उधर कहीं ना कहीं जाता ही है, कहीं इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, परंतु जैसे कहते हैं टाली उसके लिए बजती है जो रास्ते पर चलता है उसके लिए नहीं, जो रस्सी पर चलते हैं उसके लिए टाली बजती है, बैलेंस है वहां पर, जहां जहां बैलेंस है वहां पर जीवन का सौंदर्य है, जहां बैलेंस खो गया वहां सौंदर्य खो गया, जैसे आज कहा ना वो दो एक तरफ झुक जाता है तो वो धरती की तरफ झुक जाता है, तो धरती का आकर्षण होता है तो धरनी के वश हो जाते हैं, बैलेंस एक तरफ चला गया तो तराजू, और इसमें आज बाबा ने जो कहा वो क्या कहा, काटा, काटा क्या है, श्रीमत, अगर श्रीमत बीच में है तो सारी चीजें होगी, श्रीमत अगर रखा जाए तो साधन में हम लिप्त नहीं होंगे और साधना भी करते रहेंगे, श्रीमत अगर बीच में है तो लॉफुल भी बहुत ज्यादा नहीं बन जाएंगे और लॉफुल भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लॉफुल बनना भी बहुत बड़ा खतरा है, चलो हम तो लॉफुल नहीं बने पर कोई दूसरा हमसे आकर्षित हो गया तब क्या करना है, फिर तब क्या करेंगे, प्यार मोहब्बत और इश्क ये तीन बहुत खतरनाक चीजें है ज्ञान योग के मार्ग में सबसे ज्यादा खौफनाक चीजें है ये
प्यार प्यार
प्यार
जैसे को मारता है तो प्यार प्यार से
मतलब
प्यार
कैसे
प्यार को प्यार मतलब प्यार
दिखावा ऐसे ही हाथ फेर देना बहुत पहले एक ओपनिंग में एक बहन आई थी इधर से ही, कुछ उसको तकलीफ थी अभी याद नहीं, तो उसको ट्रीटमेंट लिख दिया, मैंने कहा अभी ठीक है सब, 2 महीने के बाद आना, कब तक हो, तो 3 महीने तक है मधुबन में सेवा के लिए, तो 15 दिन में आ गई, तो मैंने कहा अभी क्या है, नहीं ऐसे ही दिखा नहीं आई, मतलब ठीक है चलो यही जो दवाई है चलने दो आगे, तो अभी मैंने कहा अभी 2 महीने के बाद आना, तो फिर 15 दिन में आ गई। तो 15 दिन में आ गई तो मैंने बोला अभी कैसे आए आप, कुछ तकलीफ? नहीं, बात करने के लिए अच्छा लगता है आपसे। तो मैं बोला अभी तो बहुत डेंजर है ये तो फिर 15 दिन में जैसे आई, 15 दिन में फिर पेपर देखा तो उधर भेज दिया, फिर बाजू में उधर जाओ आप। हाँ मतलब उसने क्यों आई, तो आपसे बात करने में अच्छा लगता है।
उसने बोल दिया ये भी अच्छा रहा, अगर नहीं बोलती तो तुम्हारा तो मेरी आदत थी, तो बात
तो उधर बाजू भेज दिया, फिर आने से पहले ही पेपर उधर। हम तो नहीं, पर कोई और अगर हो गया तो वो भी गड़बड़े। तो सब माया है, माया के ऐसे दिव्य स्वरूप है, ये दिव्य रूपधारी माया है। कहाँ उसमें समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी सूक्ष्म चीजों की चर्चा मुरलियों में नहीं है, मुरलियों में अति सूक्ष्म चीजों की चर्चा है। पवित्रता संकल्प और संकल्प में और स्वप्न में भी अपवित्रता, ऐसी चर्चा है, ये चीजें कुछ और होती है। इसका उसका कनेक्शन जोड़ने के लिए थोड़ा बैठना पड़ेगा। कहाँ थे हम? बैलेंस, तो स्ट्राइक का बैलेंस। तो काटा अगर श्रीमत वाला है, बाबा ने कहा तुम्हारा तराजू बिना काटा के काटेगा तो नहीं है। हाँ फिर उसका वर्णन बाबा ने विस्तार किया, ईश्वरीय जिम्मेवारी और अलौकिक जिम्मेवारी। लौकिक जिम्मेवारी के लिए कहते हो निभाना ही है, ईश्वरीय जिम्मेवारी के लिए कहते हैं निभाना तो है, पर इसका उल्टा भी अगर हो जाए तो भी गड़बड़ है। यहाँ ज्यादा उल्टा ही हो रहा है, वो ही ज्यादा हो रहा है कि ईश्वरीय जिम्मेवारी निभानी ही है और लौकिक जिम्मेदारी तो निभाना है, ऐसा हो रहा है, वो भी नहीं चाहिए पर। हाँ तो वो भी एक गड़बड़ है। तो बाबा ने कहा ये दोनों जो है ही और तो का अंतर है, तो एक तरफ चला जाता है, एक साइड में चला जाता है तराजू, धरती को टच होता है और फिर धरती की आकर्षण होती है, और इसका भी कारण होता है बोझ का अनुभव होता है, और बोझ है दो, कौन से? बोझ लोक लाज और कर्म बंधन। जिस लोक को छोड़ दिया, जो पहला छोड़ देने वाली बात है, जिस लोक को छोड़ दिया, जिस लोक को छोड़ दिया उसके लोक लाज की परवाह, उसके लाज की परवाह करते हो, उसके की स्मृति है, नहीं वो आगे का वाक्य है, और जिस लोक में आ चुके या बन चुके जिस लोक के उसको, नहीं वो दूसरा वाक्य है, एक जिसका छोड़ चुके और जिसके बन चुके, जिसके बन चुके उसको विस्मृति और जिसको छोड़ चुके उसके लोक लाज की परवाह करते हो, और फिर आगे है जो लोग बिना, जो लोग भस्म होने वाला है और जो अभी अविनाशी है और जो जिससे अविना भविष्य का लोक बनने वाला है, उसको स्मृति दिलाने के बाद भी स्मृति में नहीं आता, तो लोक लाज बंधन ये बातें हैं, ये दो बोझ है। तो सहज योगी का सौदा करना है ना, और सहज योगी और कर्म योगी इसके आधार से दूसरी आत्माएं सौदा करेगी, तो दो चीजें चाहिए, हल्कापन तो ही सफलता होगी, कोई बोझ नहीं तो ही सफलता होगी, और दोनों दोनों मैदान में, ईश्वरीय जिम्मेवारी और लौकिक जिम्मेवारी। यहां लौकिक जिम्मेवारी कौन सी है? लौकिक जिम्मेवारी की परिभाषा देखी ना बाबा ने क्या कहा, शरीर अर्थ जो कुछ किया जा रहा है वो लौकिक है, आत्मा अर्थ जो कुछ किया जा रहा है वो ईश्वरीय है। तो ज्ञान और योगी है, और जो सेवा की कैटेगरी है वो इसमें आएगी, फिर सारा कुछ। यहाँ कोई गृहस्थी तो है नहीं बैठे कि जिनको गृहस्थी का भी देखना है और वो भी देखना है, वो नहीं। यहाँ गृहस्थी अर्थात ये जो कुछ सेवा है वो सबको ही गृहस्थ कहा जा सकता है। फिर आगे बाबा ने इसी का विस्तार किया कि गृहस्थ व्यवहार, और गृहस्थ शब्द ही हटा दो पहले, तो ट्रस्ट ही शब्द लाओ, ट्रस्ट व्यवहार और गृहस्थ व्यवहार। हाँ तो ट्रस्ट व्यवहार ये शब्द लाओ, गृहस्थ शब्द को हटा दो, क्योंकि शब्द कहते ही उसका भाव आ जाता है, हाँ, शब्दों का ही असर पड़ता है। जो हम सोचेंगे, जो हम सोचते हैं, जिस शब्द हमारे आते हैं स्मरण में, वही उसका हम स्वरूप बन जाते हैं। जैसे सुना है था ना, कोई माता आई है, बड़ी नष्टो मोह माता है, और यहाँ पर किचन में सेवा कर रही है। अचानक एक दिन उसके बेटे की याद आ जाती है, उसके रोटी बेलते बेलते तो आंखों से आंसू आ जाते हैं ना, तो याद और तुरंत उसका स्वरूप बन गई। तो संकल्प आया और तुरंत स्वरूप, संकल्प किया ही है। जैसे काम वासना का भी ऐसा है, जैसे देह की तरफ आकर्षण हुआ और मन में उस रूप को याद किया, तो तुरंत वो काम भाव प्रकट हो जाता है। स्मरण किया और वो प्रकट हो गया, केवल स्मरण मात्र से। तो इतना सूक्ष्म है ये, संकल्प पर ही सारा आधार है। संकल्प क्या हम कर रहे हैं, बस उसका तुरंत स्वरूप। आगे ये भी बोला ना बाबा ने, जैसा पहले संकल्प में परिवर्तन और फिर बोल और कर्म में परिवर्तन आ जाएगा। ये पूरा मुरली का मुझे सबसे पावरफुल वाक्य लगा कि संकल्प में अगर परिवर्तन कर दो तो बोल और कर्म परिवर्तन हो जाएंगे। हम ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे कर्म को परिवर्तन करने का या बोल को परिवर्तन करने का, परंतु संकल्प को अभी भी खुला छोड़ के रखा है। वो संकल्प यदि परिवर्तन हो गया तो वो दोनों परिवर्तन हो जाएंगे। देह को देखते ही संकल्प चलने लगते हैं। संकल्प को उसकी विधि है ज्ञान के संकल्प, इमर्ज करो। हाँ, पर ये बहुत एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है, ये बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। वो बार बार, और वो कहीं स्थान में जाने की भी जरूरत नहीं, एक स्थान पे बैठ के भी किया जा सकता है। वो संसार के मुंबई में क्या हो रहा है वहां जाके देखूं, और फिर वहां से मैं, मुझे इसका आकर्षण नहीं है उसका, ये करने की जरूरत नहीं। यहाँ बैठकर ही एक ही स्थान बैठकर सारे संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाना। हाँ, उसको सबको फिर एक ही ढांचे में कि ये सब देह है, देह विनाशी है, उसमें बीमारी आने वाली है, उसमें व्याधि है, वो बूढ़ा होने वाला है और मरने वाला है, ये सब तो होने ही वाला है। अभी कल परसों बाबा ने कहा था ना, विनाश के लिए तैयारी करो ना करो, स्थापना तो नए दुनिया की स्थापना होनी ही है, कोई कुछ कर नहीं सकता। तैयारी करो या ना करो, स्थापना होनी ही है। पढ़ो ना पढ़ो, मरना तो सबको ही है, ये वानप्रस्थी है। कुछ भी करो तुम, अल्टीमेट वो जो है उसकी क्या कहते हैं, नियति, वो तो बिल्कुल निश्चित है। सबको जाना है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं जाऊंगा।
जानने के बाद भी फिर आकर्षण कर रहा
वो ही तो, वो विस्मृति के कारण, और या फिर वो जानना जो इतना गहरा नहीं है, वो बिल्कुल उथल है, ऊपर ऊपर का जानना है। हमने ज्ञान को जैसा, ये जो है ना, ये पक्षी कब उड़ने लगा, जब उसको एक अंदर से पुकार आए कि अब मुझे अज्ञात गगन की ओर, अनिवार्य पुकार जब सुनता है तभी हो जाता है। तब तक हमारा जो इच्छा है और ये जो कुछ है ज्ञान योग की, ये बहुत ही ऊपर 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 ऊपर। हाँ, बस एक डाली से उतने डाल, खुश हो रहे, वाह मुझे तो आ गया उड़ना। वो पुकार एक अनहद नाद, एक तीव्र पुरुषार्थ की एक डिवाइन। मुझे याद है बहुत पहले जब मैं एक आश्रम में गया था, और मतलब वहां रुका था, तो मेरे ही साथ एक दूसरा व्यक्ति वहां था जो मुझे मिला। उसको संन्यास लेने की, मतलब सब लोग कहते थे, सारा परिवार वो भक्त था उस आश्रम का, और सब लोग कहते तू भी संन्यास ले ले, तू भी संन्यास ले ले। उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी संन्यास ले लूँ, वो कुमार था, पर वो कहता था अभी तक वो डिवाइन कॉल नहीं आया, मुझे क्या करूँ। वो एक कॉल आना चाहिए, एक पुकार कि आ जा, चलो आ जा। वो कॉल जब तक नहीं आता है तब तक कुछ नहीं, आत्मा ठंडी रहती है। वो एक आवाज आ जानी चाहिए कि बस चलो। वो ही ना, वो तो कॉल आ गया, इधर आ गया, अभी अति तीव्र पुरुषार्थ का जो कॉल है ना, कि बस अब वो वाला कॉल की बात चल रही। ये तो यहाँ पहुंचना, ये तो सबसे बड़ा कॉल है।
खेल पूरा हुआ।
हाँ, मतलब वो जो वाली बातें है ना, वो अभी कॉल और काल मिस कॉल से पहुंच गए। ओ नो वो एक डिवाइन कॉल आ जाना चाहिए, एकदम ऐसी जागृत अवस्था कि बस अभी ये ही है। जैसे कहा ना, उस दुनिया से बेहोश हो जाए और इस दुनिया में आ जाए, डॉक्टर्स के हमजिन्स के लिए कहा ना, ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि उस दुनिया से बेहोश हो जाए और इस दुनिया में आ जाए। ये कॉल अभी तक नहीं आया है, ये कॉल आ जाए। लगन में जैसे बस ये एक ही लगन लग जाए कि बाकी सारा भूल गया, कुछ याद ही नहीं बाकी दूसरा, तो ये वाली चीज है। तो कहाँ थे हम? बैलेंस पर, दोनों का बैलेंस रखना है, और व्यवहार, गृहस्थ व्यवहार और ट्रस्टी व्यवहार। अब गृहस्थों की, गृहस्थियों की भाषा क्या है?
वाले
ऐसे वैसे
बाप
बात को बड़ी कर देना, बाप को भी पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। बहानेबाजी की भाषा है, एक है चढ़ती कला की भाषा, एक है बहानेबाजी की भाषा। तो बहाने बनाना, ये एक्सक्यूजेस जो है, ऐसा था तो वैसा, ऐसे और वैसा, ये जो भी है वो आत्मा को कभी, चलो दूसरों को आप कन्विंस कर दोगे पर स्वयं उठ नहीं सकोगे, उड़ नहीं सकोगे, स्वयं को दूसरों के से सुरक्षित कर दोगे कि सबको पता चल गया ये मैंने नहीं किया, इसका ये कारण था, और सबने स्वीकार भी कर लिया। हाँ, स्वयं की स्वयं ठगी करना है। तो और आगे फिर वो गद्दी का उदाहरण दिया ना, गुरु का, वहां पर एक बैठता है तो नाम भला करता है, यहाँ पर इतने सारे, एक शिष्य यहाँ पर इतने सारे हैं सद्गुरु के। फिर और आगे दीपमाला के बारे में भी कहा, एक एक दीप, एक दीप से दीपमाला बनती है, यहाँ इतने सारे दीपक है तो विश्व में दीपावली होगी, रोशनी होगी, दीपावली होगी, और फिर इतने सारे सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा के, सर्विसेबल, तो विश्व में नाम वाला करेंगे, भी बोला है ना, तो यहाँ इसको पूरा किया बाबा ने। अभी शुरुआत से अंत तक देखोगे तो क्या क्या करना है, क्या क्या धारणाओं की बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो है बाप समान, वो तो बहुत ऊंची बात है, उसको छोड़ दो, उसके थोड़ी नीचे वाली आते हैं। बाप समान मतलब हाथ में कुछ तो आता ही नहीं है, ऐसी चीजें चाहिए जो हाथ में आए, थोड़ी निराकार चीजें नहीं चाहिए, जिसका नाम और रूप हो, ऐसी थोड़ी पालपेबल पैलेटेबल, जिसको हम पचा सके, ऐसी चीज। हाँ, स्वच्छता और सत्यवादी, ये सब करने के लिए ये देखा, मुरली चालू हुई वहां से, राइट हैंड अर्थात ये, अब ये है क्या उसके लिए सारा पोता मेल और सब कुछ दिखा, घड़ी, सेना, गुरु, शिष्य, तराजू, ये सब कुछ। तो सत्यता एक बहुत बड़ी धारणा है, और दूसरी है स्वच्छता। स्वच्छता अर्थात पवित्रता, स्वच्छता अर्थात कोई भी मलिनता वहां पर नहीं है, कोई भी गंदगी वहां पर नहीं है, हृदय शुद्ध हो जाए, परिष्कार जिसको कहते हैं हिंदी में, हृदय का परिष्कार हो जाए संपूर्ण, कुछ भी अशुद्धि वहां ना रहे, शुद्ध अंतकरण, ऐसा अंतकरण ही परमात्मा को प्रिय है। क्या कहा?
कहना और करना
सब एक हो जाए। उस दिन नागेश भाई कह रहे थे ना, खौफनाक आदमी कौन है? अंदर और बाहर जो अलग अलग है, ये संसार में सबसे खौफनाक आदमी है, सबसे डेंजरस, खतरनाक। सारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स, वो भी कैसे? अभी ज्ञान, ज्ञान में तो होशियार है सब। बाबा ने कहा मेरे से भी अच्छा भाषण देने वाले बैठे हैं यहाँ पर, मैं भी फीका पड़ जाऊँगा इनके सामने, मेरे ही ज्ञान को ऐसा बताते हैं कि अपना थोड़ा डाल के। हाँ, या वो बहानेबाजी में बाप को भी पाठ पढ़ाने लग जाते हैं, ऐसे वैसे, बाबा ऐसा नहीं वैसा था, ये सब बातें। तो ज्ञान, फिर योग, धारणा और सेवा। सेवा तो सब कर रहे हैं, परंतु जो हम सेवा कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी की वो सेवा है, वो भी उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। कितनी, एक मुरली में था, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, एक अव्यक्तवाणी है जिसमें कहा ना, जिसकी सूक्ष्म मनसा अति शक्तिशाली है, सूक्ष्म मनसा अति शक्तिशाली है, वही सबसे शक्तिशाली है। दूसरों को दिख रहा है ये बहुत शक्तिशाली है, वो नहीं, जिसकी आंतरिक जो मन, उसने अपना इतना शक्तिशाली बना लिया है, वही सबसे शक्तिशाली है, और जिसमें शुभ भावना, शुभकामना है सभी के प्रति, वो आत्मा सबसे शक्तिशाली है। तो स्वयं को अंदर से मजबूत करना, और ये चारों ही विषय जो है, चार सब्जेक्ट, चार अलंकार, चार भुजाएं, उसमें कहाँ कहाँ कमी है वो देखना। बाबा ने तो कहा है कि सेवा, धारणा और योग, इसमें कमी है, ये बाबा ने कहा। परंतु हम क्या सोचते हैं, हमारा योग अच्छा है, हमारी सेवाएं भी बहुत अच्छी है, ज्ञान में कमी है कई योगी और धारणाओं में कमी है। ज्ञान में कमी का कारण, ज्ञान पहले तो बुद्धि में याद ही नहीं रहता है, सबसे मुख्य। बहुत सारी बहनें ओपीडी में आती है ना, वो उनकी एक कंप्लेंट होती है कि कोई दवाई दो। किस लिए? वो कुछ भी याद नहीं रहता है, इसकी दवाई दो। एक एक माता जी तो उतनी नहीं थी, बाबा को याद कैसे करो, उसकी दवाई दो। उसकी दवाई दिया होता तो आज तक स्टॉक खत्म हो गया होता। डिलीट करो अभी, जो बहुत सारा उसमें एक्स्ट्रा भरा है ना, उसको डिलीट करना पड़ेगा। ज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ज्ञान हमारा विश्वविद्यालय का पहला सब्जेक्ट है, हम ये भूल जाते हैं, और सेवा अंतिम सब्जेक्ट है। त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट है। सेवा पहले, त्याग और तपस्या फिर सेवा है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अगर चार सब्जेक्ट है तो चारों ही सब्जेक्ट पर उतना ही सबसे पहले ज्ञान से चालू करना। संगठन में हम पढ़ रहे हैं परंतु अलग से हमारी कुछ और भी स्टडी चालू रहे, मनन, चिंतन, ऐसी स्टडी हो जिससे स्टिमुलेट हो मनन करने के लिए। इतने सारे लेक्चर्स है यज्ञ में देने वाले, पर हम बहुत सारे ऐसे है कि उनको सुनने के बाद कुछ मनन चिंतन के लिए वैसा स्टिमुलस नहीं मिलता। ऐसा कुछ सुने कि जिससे, सुने या देखे या पढ़े कि जिससे हमारी बुद्धि एकदम चलाए, एकदम ये हो गया, उसमें कुछ हलचल आ जाए, सोचने के लिए मजबूर हो जाए वो, तो ही हम कह सकेंगे कि हमारा अभी चिंतन चले। नहीं तो चिंतन कहाँ चलता है? सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, सब ठीक ही लगता है। कुछ तो ऐसा चाहिए जो थोड़ा हटके है, जिससे हम, हमारे लिए वो प्रैक्टिकल हो। तो एक तो ज्ञान, उसका चिंतन, उसका मनन अलग से, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ज्ञान जैसे जैसे बुद्धि में अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मन बुद्धि की परतों में समाते जाता है, स्वतः ही वो योग जो है, वो अभी कल परसों की मुरली में था ना, कई बच्चे कहते हैं हमारा योग का चार्ट 50-60% है, और फिर बाबा फिर प्रश्न क्या पूछते हैं कि क्या ये बात को योग कहेंगे? बाबा ने फुल स्टॉप की और कहा, बड़ा मुश्किल है, फुल स्टॉप, बड़ा मुश्किल है। कहते हैं हमारा योग का चार्ट 50-60% है, फिर पूछते हैं कि क्या ये बात को योग कहेंगे, ये प्रश्न बाबा से पूछते हैं, और बाबा ने फुल स्टॉप करके कहा, बड़ा मुश्किल है, और फिर फुल स्टॉप, आगे बोलने की जरूरत नहीं है कुछ। अगर ये प्रश्न पूछ रहे हो तो समझा नहीं है अभी तक योग क्या है। योग भी ज्ञान के ही आधार से समझा जाता है, उसके सिवा नहीं। ज्ञान को समझते समझते ही मगन हो जाना, अर्थात योग अर्थात कोई एक वो शारीरिक प्रक्रिया तो नहीं है ना, कि बाबा के कमरे में बैठे और फोटो को देख रहे और बुद्धि को एकाग्र कर रहे, ये खाली योग तो है नहीं। योग की तो बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी है बाबा ने, चौड़ाई वो सब क्या है, लंबाई चौड़ाई वो सारा कुछ, ये कोई योग हमने क्या कर दिया, योग को बहुत ही सीमित कर दिया है। सहज तो हो जाना चाहिए वो, परंतु हमने उसे कुछ और कर दिया है उसके साथ, बड़ी नाइंसाफी की है हमने योग के साथ। हाँ, सुविधाजनक, फिलोसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, तो वैसा करके रखा है योग। योग को हमने लिमिटेड कर रखा है, वो है अनलिमिटेड, सीमित कर दिया है उसको, बस ये योग है, वो भी पता नहीं उसमें क्या हो रहा है। तो इसकी लंबाई गहराई में जाने के लिए ही ज्ञान की गहराई में जाना पड़ेगा। ज्ञान की गहराई में जाने पड़ेगी, ज्ञान का चिंतन, अध्ययन करना पड़ेगा। हम अध्ययन कहाँ कर रहे हैं? सुनने से कुछ नहीं होता है, सुनना तो बहुत कम ये है, कुछ सुन सुन के सुनोगे थोड़ा। अभी सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, स्वाध्याय, ये सब बाजू रखो, जो सुना है सब सब सुनना बंद। अभी स्वयं का बहुत अच्छा सुना है, जिसने भी सुना है बहुत अच्छा सुना है, अभी रखो सबको बाजू में रख दो। अभी हमको अपना कुछ निकालना है उसमें से, ये मुरली है, ये मैं हूं, इसमें मैंने क्या समझा, बस वो दिखाया है। इमर्सन करके एक बहुत बड़ा थिंकर, किसका क्या दार्शनिक था विदेश में, वो जहां पर भी भाषण देने जाता था, एक बहुत ही बूढ़ी माता आती थी उसके, वो अनपढ़ थी पर उसके भाषण में आती थी जरूर, क्योंकि उसको पता था ये धर्म के बारे में सत्य की बातें बता रहा है। तो किसी ने, हर लेक्चर में वो रहती थी, किसी ने उसको पूछा कि भाई तुमको कुछ समझ में आता है क्या, ये जो इतनी बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें, तत्व ज्ञान की बातें बता रहे, तुम्हारी बुद्धि में कुछ समझता है क्या? वो कहते हैं मैंने एक सत्य को समझा है जीवन में, कि परमात्मा जो है मेरे अति समीप है, मुझे उसका महसूसता इतनी ज्यादा होती है, इतनी निकटता का अनुभव होता है। अब मुझे खाली ये देखना है कि ये जो मैंने सत्य समझा है, मैंने किताबें कुछ नहीं पढ़ी, शास्त्रों तो मुझे कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा है, बाइबल ये सब मुझे कुछ पता नहीं है। मैं केवल ये देखना चाहती हूँ ये आदमी जो बता रहा है और इसका इतना नाम है, मेरे जो सत्य है इससे भिन्न भी और कुछ चीज है क्या? ये मेरा अनुभव है। वो सोचती अभी तक मैंने इसको जितना सुना मुझे नहीं लगता इसने ज्यादा अनुभव किया है मेरे से, क्योंकि मेरा जो अनुभव है परमात्मा के समीप्य का, समीपता का, वो इतना ज्यादा है कि उसके सामने इसका एक घंटे का दो घंटे का लेक्चर तो कुछ भी नहीं है। वो फिलोसोफर है, इसने कोई किताबें नहीं पढ़ी, अनपढ़ है ये, गवार है, और उसको अनुभव हो गया है। पर तो अनुभव बहुत बड़ी अथॉरिटी है। उसके सामने हमने अब तक बहुतों को सुना है, शुरुआत से लेके अब तक सभी का अच्छा है, नो डाउट। वो पर हम अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छा है, अनुभव से उसका बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। अनुभव तभी होगा, भगवान ने कहा एकांत में बैठो और ज्ञान का मनन चिंतन करो, तो ही नई बातें इमर्ज होगी और जो निकलेगी ना वो हमारी होगी, नहीं तो वो सब उधार है। बाकी सारी जो हम उधारी का ही जीवन जी रहे, हाँ, जो हमारी होती है वो भूलती नहीं है। दूसरों का क्या सुना, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, उनका अपना अनुभव है, उन्होंने ज्ञान को इस रीति से समझा है, परंतु उनका अनुभव मेरा अनुभव नहीं है, मेरा कुछ और है। मुझे तुम्हें नूतन पत्र रचना होगा, गीत ना, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, नया पथ रचना होगा, नई पगडंडी तैयार करनी होगी, नए मार्ग से चलना होगा। जिस मार्ग से मैं चल रहा हूं वो मार्ग आपका नहीं है, भले मंजिल सबकी एक है, श्रीमद सबके पास दी हुई है, परंतु मार्ग फिर भी अलग है। मुझे अपना मार्ग क्रिएट करना होगा और वो क्रिएट होगा केवल चिंतन से। आज सुबह जो बताया ना, गुलजार दादी बोल रहे हैं सुबह क्लास में कि भाई दिलकुश मिठाई खाओ और खिलाओ। क्लास पूरा होने के बाद जानकी दादी ने पूछा कि दिलकुश मिठाई बनाएगा कौन? गुलजार दादी बोला वो आपको बनानी है। तो केवल दादी के लिए नहीं, हम सबको अपनी मिठाई खुद बनानी है, तो ही हम दे सकते, नहीं तो नहीं। खुद ना कहते दिलकुश मिठाई पे क्या चर्चा करें। कैसे बनाए, हाँ ये एक है, मतलब जैसा मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मार्ग तो बहुत बड़े हैं, ये मेरा पर्सनल जिसको मैं क्यों, अगर मुझे कुछ एक टॉपिक दिया जाए, ये टॉपिक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको पहले एक बार पढ़ना, फर्स्ट स्टेप, फिर थोड़े देर के बाद उसको पढ़ना, एकदम तुरंत सेकंड रीडिंग नहीं, कुछ समय चला जाए उस कुछ कुछ समय कुछ और करना और फिर उसमें वापस आना सेकंड टाइम, फिर और थोड़ा समय जाने देना, फिर थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम में फिर केवल उसमें मुख्य पॉइंट्स क्या है वो उठाना उसमें से। फर्स्ट तो पैटर्न समझ में आने के लिए कि बाबा ये कर कहना चाहता है, ऐसा 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 उसका भाव है। फिर दूसरे इसमें, पहले इसमें थोड़ा उसका भाव, फिर शब्द क्या क्या है, शब्दों के अर्थ क्या क्या है, एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ है। ऐसा कुछ नहीं हो कि शब्द का अर्थ छूट जाए, क्योंकि शब्दों पर बहुत आधार है, बाबा शब्दों से तो खेलता है बहुत, तो हम भी खेलेंगे। तो शब्द, एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ है वो, अच्छा जो वाक्य है उसकी रचना कैसी है, फिर उदाहरण कौन कौन से दिए है बाबा ने, वो समझने के लिए। अब ये सारा होने के बाद में बाजू में रख के उसे फिर सारा याद करने का प्रयत्न करे कि वो क्या क्या बातें बताइए, और फिर वो याद किया, अभी याद भी हो गया, अभी ये बाबा ने कहा हुआ है, संसार में अब तक लोगों ने इसके लिए क्या कहा है, ये और एक स्टेप है कि ये बाबा कह रहा है, ये संसार के लोग, अभी मेरा क्या अनुभव है जीवन का, इसका कोई मेरे से लेना देना है या ऐसी हवा में बातें चल रही है सारी, इसका और मेरा कुछ है क्या संबंध, और फिर उसका और विस्तार 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 विस्तार, और फिर वो जब सुनाते हैं तो और नई नई पॉइंट सबसे निकलती है, तो और वो समझ में आता है क्या है। मतलब एक ही चीज को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत समझ में आ जाए। बहुत हायर लेवल की बातें बाबा कहते हैं, फिलोसॉफिकल जिसको कहते हैं, बहुत पीएचडी लेवल की बातें है ये, बहुत इसमें मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। एक बार पढ़ने से होता है, दस दस बार पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, सही में कह रहा हूँ, 10 बार। अभी ये मुरली कितनी बार पढ़ी होगी मैंने, रात, मैं वही कह रहा हूँ, एट इंटरवल स्टडी करनी है। एक पढ़ पढ़ा फिर छोड़ दो, फिर तुरंत नहीं आओ उसके ऊपर। एक बार पढ़ा, थोड़ा गैप देना है, कुछ और काम करना है, फिर उसके बाद आना। रीडिंग एट इंटरवल्स, फिर वापस आना, फिर छोड़ देना, फिर और आना, इस तरह से उसके। और कुछ कुछ अच्छा रहा उसको अलग से लिख के रखना, लिखता मैं बहुत कम हूँ, पर कुछ कुछ अच्छा रहा वो लिखना, ना के बराबर कुछ कुछ अच्छा रहा उसको लिखना। और नहीं वैसा नहीं है, वो बार बार करते ना इसके लिए ना, संकल्प ही नहीं करना है ऐसा। स्मृति स्वरूप अर्थात सब याद रखना और वो बातों को फिर लिंक करना, ये और एक स्टेप है। ये जो पढ़ा इसके लिए अब तक बाबा ने क्या क्या कहा है, इधर से उधर लिंक, इधर से इस मुरली को उस मुरली से, उस मुरली को इस मुरली से, अव्यक्त को व्यक्त से, साकार से, इस तरह से। और वो सारा जो कुछ है अब उसको सीधा योग में लाओ। फिर उसमें से कोई ड्रिल बन सकती है क्या? एक है, आपने ड्रिल बनाई मुझे दे दी, करो ये, अब मेरे से नहीं होगी, वो नहीं होता है। अपनी ड्रिल खुद एक नई प्रकार की, एक नया पैटर्न इमर्ज करके एक नई ड्रिल बनाई, वो होती है, नहीं तो नहीं होती है। दूसरों का दिया तो नहीं होता है, वो उनका चिंतन है, हम हमारा कुछ नहीं है उसमें। चलो अभी लास्ट ग्रुप बचा हुआ है डॉक्टर से बाबा ने, आशीष भाई सुबह आपने बताया डॉक्टर से बाबा ने बड़े बड़े चीजें कही है। एक तो कहा स्पेशलाइजेशन करने के लिए कहा, दूसरा इन्वेंशन करने के लिए कहा, फिर बताया कि बीमारी कौन सी है, फिर बताया वो बीमारी का इलाज कैसे होगा, हीलिंग कैसे होगी, उसकी विधियां बताई बहुत सारी। और फिर कहा इंजेक्शन कौन कौन से है और किस किस को इंजेक्शन देने हैं, एक तो खुद को, तीन लोगों को इंजेक्शन देने, खुद को, पेशेंट्स को और दूसरे डॉक्टर्स को, हम जीन्स को तीन इंजेक्शन अलग अलग प्रकार के और उसके इन्वेंशन। और स्पेशलाइजेशन चार बताए, उसमें तीन का विस्तार किया। सबसे पहले तो जनरल सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और फिजिशियन। फिजिशियन अर्थात दवाई देने वाला, वो दवाई कौन सी देनी है। दूसरा है आँख के डॉक्टर बनो, स्पिरिचुअल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, रूहानी आँख के डॉक्टर। उसमें वो क्या करता है, नयनों की दृष्टि परिवर्तन कर देता है। तो तुम भी क्या करो, परिवर्तन कर दो, पहले दबाओ फिर समाप्त कर दो, शांत कर दो, संतुष्ट कर दो, ये सब कर दो। और कौन सी बीमारी का नाम क्या है, सबसे खतरनाक बीमारी है पुराने संस्कार, किसी के पुराने संस्कार ये बीमारी है। स्पेशलिटीज ये है, जितनी डिग्री लेना चाहे ले सकते हो, जितनी ज्यादा डिग्री उतनी ज्यादा नामी ग्रामी, उतने में स्पेशलिटी होगी। ये एक। फिर सर्जन्स अपने इंस्ट्रूमेंट से, अपनी सहनशीलता की शक्ति से उनके ऊपर ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन भी एक सेकंड में, टाइम भी दे दिया ऑपरेशन का, ऑपरेशन का टाइम, ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन के औजार, वो यंत्र इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे थिएटर में तो स्वयं के शस्त्र, उनकी कमजोरियों को समाप्त करना, ये सारी चीजें करनी है। और क्या करना है, बनी बनाई प्रजा, फिर प्रजा और भक्त कैसे तैयार करना, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए है। हम जींस को कैसे करना, उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। और फिर पेशेंट कैसे आता है, भिखारी के स्वरूप में आता है, इसके लिए उसका फायदा उठा सकते हैं। जो भी सुनाओगे दर्द कम कर दो, और जो भी सुनाएगी सुनना पड़ेगा उसे, पानी और झूठी दवाई भी दे दो तो भी ठीक हो जाते। ऐसे होता है जब हमको लगता है कि ये साइकोलॉजिकल है, डिस्टिल वाटर या सलाइन का इंजेक्शन दे दो, अभी कैसा एकदम बढ़िया, वो कभी नहीं भूलता है। वो आपने जो इंजेक्शन तब दिया था ना, वही दे दो आज, ठीक है, वही दे देते बहुत ज्यादा होते रहता है।
ये जो अपना सुदेश रहने है ना, उसको ना थोड़ा सांस में घुटन थी, तो ऑक्सीजन चाह रहा था, बेंजी ने बोल दिया मैं नया नया आया था, मेरे से जाए मेरा ब्लड, मेरे से ठीक कर बड़े एकदम अच्छा था, मेरे से वही नहीं रहा था, कैसे खून कैसे चेक करना, मतलब एकदम ठीक हो रहा है अभी अभी पर।
क्योंकि बाबा ने हीलिंग की प्रोसेस भी बताई, दो रीति से ठीक होता है, एक भावना से एक खुशी से, आज यही बताया ना, ठीक है। और दो बातें हैं, दुआएं और दवा। दवा सबसे पहले एकदम कम लेवल का है, तो बिल्कुल ना के बराबर है, फिर है दुआएं, खुशी और भावना। भावना उसको ठीक करता है। एक बार कई कई लोग ऐसे आते हैं कि जिन्होंने 10 दिन से बीमार है और कई दवाई ले रहे हैं, एक ही दवाई ली और अच्छी अच्छी दवाई ली पर बिल्कुल ठीक नहीं हुए, पर किसी ने कहा नहीं इसके पास जाओ, ये थोड़ा इसके पास जाओगे तो ठीक होगे, तो आया मेरे पास, मैंने देखा अरे दवाई तो ठीक है, तो वही दवाई फिर लिखी जो पहले चालू थी बाहर के डॉक्टर की, वही फिर लिखी, अभी ठीक है, जब से ये लिया बस अभी ठीक हो गया किसने ठीक किया, वही वाली बात है। हीलर कौन है? उसके अंदर का जो विश्वास है वही उसको ठीक करता है, कोई चमत्कार की बात ही नहीं है उसमें। वो अंदर जो बैठा है बस वही उसको ठीक करता है, वो विश्वास ही उसे ठीक कर देता है। अगर विश्वास नहीं है तो वो कहीं पर भी चले जाओ नहीं ठीक हो। ये बात है। मुझे कुछ कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनसे मुझे जिनका मुझे चेहरा ही याद नहीं है अभी तक, मतलब वो मुझे मिले चलते चलते एक मिनट के लिए बस देख लो, और देखा दवाई लिख दी अभी वो चले गए, वहां से उसका कहाँ विदेश से उसका मेल आ रहा है, अभी मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं और वो रिपोर्ट भेज रहा है अभी ये रिपोर्ट है, मैंने भी रिप्लाई कर दिया अभी ये चेंज करके ये चालू कर दो, अभी ये चेंज कर दिया। कितने ऐसे है कि जिनको खाली चलते चलते मिले हैं, पर वो अभी बड़े बड़े जगह रहते हैं, उधर दिखाना चाहिए ना, ये भी बोला है कि उधर दिखाओ इधर मत भेजो, फिर भी वो इधर ही। सबसे खतरनाक पेशेंट यही हो गए सारे यंग। तो विश्वास उसको ठीक करता है, हीलिंग होती है विश्वास से, भावना से और दुआओं से, दवा से। ये एक बात बताई। फिर बनी बनाई प्रजा आपके पास आ जाती है, बाबा ने कहा वहां तो मेले करने पड़ते हैं, बुलाने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, और यहाँ पे जो भी सुनाओगे वो सुन लेते हैं। ये एक बात बोली। और हाँ, फिर वो हमजिन्स के बारे में भी कहा है। हाँ एक नहीं, वो हमजिन्स के लिए, उसके पहले ये दूसरा एक ग्रुप है यहाँ पे कि जिसके लिए बाबा कह रहे हैं कि एक तो ये तुम्हारी प्रजा बनेंगे। फिर हाँ, एक बार डॉक्टर निखिल, एक दादी प्रकाशमणि आए थे हॉस्पिटल में, और वो क्लास निखिल सर को बहुत प्रश्न पूछने की आदत है, तो उन्होंने पूछा था, दादी हम डॉक्टर लोग जो है हॉस्पिटल में रहते, हम कोई कोर्स नहीं कराते, हम कोई किसी का कुछ ये नहीं करते, जैसे बहनें करती है ना वो प्रजा बनाती है, बाबा कहता है प्रजा बनाओ तो हम तो प्रजा बनाते नहीं, अब हमारा क्या होगा। तो दादी ने बहुत ही जबरदस्त और बड़ा संतुष्टजनक उत्तर, खुश करने वाला उत्तर दिया था सबको। दादी ने कहा अच्छा आपके पास कौन आता है? तो कहता बहने आती है हमारे पास। अच्छा बहने क्या करती है? तो बहने तो अज्ञानियों की सेवा करती है, 7 दिन का कोर्स करती है, तो बहने क्या बनेगी? राजा बनेगी। आप किसकी सेवा करते हो? बहनों की, और बहने हैं राजा, तो आप क्या बनोगे? महाराजा। तभी संतुष्ट हुए, नहीं तो निखिल सर को संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो काम ही नहीं है दूसरा तो क्या करेंगे। तो फिर हाँ, तो बाबा ने ये तो भक्तों के लिए कहा, फिर प्रजा कैसे बनेगी? ये तो प्रजा प्रजा के लिए कहा, फिर भक्त कैसे बनेंगे? कोई है जो नहीं सुनेगा, सुना अनसुना कर देगा, वो भी हलचल के समय में महसूस था कि शक्ति से, फिर वो आएंगे और फिर उनको इष्ट समझेंगे अपने आप को, या ये कहेंगे कम से कम इष्ट भक्त तो बन ही जाएंगे, या ये समझेंगे यही संदेशी थे और यही पैगंबर थे, तो ये इसके हो जाए अच्छा, तो ये भी ये बन जाएंगे। मतलब ये भक्त बनना, प्रजा बनाना, बीमारी कौन सी थी, विधि क्या क्या है, कैसे हील होता है पेशेंट, स्पेशलाइजेशन क्या क्या करना है। तो एक गले के डॉक्टर का छोड़ दिया बाबा ने, 3 का बता दिया, दर्द कम होने का गले वाले का छोड़ दिया, ENT का छोड़ दिया, ऑपरेशन जनरल सर्जन, फिजिशियन और अपना ये आय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो ये 3 बन जाओ एक सेकंड में। हाँ आय का ज़्यादा विस्तार किया उसमें, आँख से बस एक सेकंड में कर दो। और फिर है ये हमजींस, हमजींस का क्या करो? हाँ इनको भी एक इंजेक्शन, पर हाँ पहले स्वयं को इंजेक्शन लगाओ, स्वयं की सुदबुद्ध, वो अनुभव से फिर दूसरों को इंजेक्शन लगाओ, तो वो देहभान की सुदबुद्ध संस्कार वो सब भूल जाएंगे। और फिर ये जो हमजींस है उनको भी इंजेक्शन लगाओ, तो उस दुनिया से बेहोश होकर इस दुनिया में आ जाए। कहीं अव्यक्त में बाबा ने एक जगह कहा है, जैसे पेशेंट बेड पर पड़ा रहता है और डॉक्टर आकर उसको बेड से उठा के चलाने लगता है, वैसे तुम विश्व की आत्माएं जो कलयुग के बेड पर पड़ी हुई है उनको वहां से उठाकर सतयुग में चलाते ले चलो। ऐसे अव्यक्त महावाक्य है। तो वो करो। और क्या कहा हमजींस के लिए? हाँ फिर कुछ कुछ ऐसे है कि भाई वो उलाना देंगे कि तुमने जगाया नहीं, तुम्हारा तो फर्ज था जगाना, हम भले सोए थे। ए जागो, क्या कहा वहां पे? ए जागो, कुंभकर्ण, एक बार जगने से नहीं होता है कि निमंत्रण बार बार करना पड़ेगा तो ही हो जाएगा, पर्चे वगैरह देने से नहीं, बार बार जगाते रहना पड़ेगा, बार बार जगाते रहना पड़ेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई बहुत गहरी नींद सोया है, सोचो, हम उसको जाके जगाए तो सब फर्स्ट रिएक्शन क्रोध, जगाया क्यों, बहुत अच्छा सो रहा है, स्वप्न दिख रहा है उसे कुछ अच्छे अच्छे, और जाके कोई उठा दे तो डिस्टर्ब किया ना आपने। तो किसी भी सोए हुए व्यक्ति को जगाना अर्थात उसके क्रोध का भाजन बनना है, खतरा मोल लेना भी है थोड़ा बहुत। हाँ क्यों, जो ये सोचते हैं कि मैं ही स्वर्ग में हूँ और ये आए स्वर्ग की बातें बनाने। दोनों तरफ से पर फिर भी श्रीमत कहती है कि जगाओ तो जगा दो, चाहे फिर जो भी हो जाए देख लेंगे। और सोए सोए हुए व्यक्ति को, जैसे कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण का देखा ना रामायण का सीन, क्या क्या किया उसको जगाने के लिए, उसके कानों में ढोल बजाया नहीं उठा, फिर वो बांध मारे हो तो ऐसे किया तो सब इधर कर दिया पूरा, कुछ बहुत कुछ किया, अंत में भोजन जब लाया और उसकी सुगंध तो वो जगा, मतलब टोली अपनी भाषा में टोली से वो कैसे भी करके साम दाम दंड भेद सारा कुछ लगा के उसको जगाना है बस। हाँ, चक्रपाणी। हाँ बड़ा लंबा सुनाया था उसने,
मुझे मानना ही पड़ा बोले, इतना भोली सूरत लेके भोली के लिए तो फिर मुझे मानना पड़ा तब आया बोले।
दो तीन बार आ चुका है हर इसमें दिखता ही है संत इसमें। हाँ फिर ये एक पॉइंट रह गया, 7 दिन कोर्स जो करा लिया उसमें आत्माएं अंतिम पूर्व, आपने कहा गया आशीष भाई चलो समय बताया, समय नहीं होता है पूर्व मतलब सुबह, समय पूर्व मतलब क्रॉप फसल, इंग्लिश ट्रांसलेशन पूर्व मतलब गांव सिटी टाउन, अब ये पूर्व भरपूर, पर ये सिंधी शब्द इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है मुरली उसमें क्रॉप, हाँ यहाँ क्रॉप होता है, अंतिम फसल जो होती है ना उसमें इतनी पावर नहीं होती है, फसल जो होती है ना अंतिम लास्ट क्रॉप करके दिया है वो, क्योंकि पूर्व शब्द का अर्थ कहीं है ही नहीं, पूर्व में वही सारा है गांव सिटी नागपुर कानपुर, हाँ वो उसके लिए पूर्व, पर बाबा अपने नए शब्द बनाता है निक्रोधी, हाँ बस लास्ट वाली जो चीज है बची हुई उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, तो स्वयं अपना उल्लास उनमें भरो, अपनी शक्ति उनमें भरो, स्वयं की हिम्मत उनको दो, वो तो चल भी नहीं सकती पापा ने कहा, इतनी कमजोर आत्मा है, टू लेट के आपके हिसाब से तो वो टू लेट है, 1980 की बात चल रही है कि आपके हिसाब से वो टू लेट है, तो उनको अपनी शक्ति से चलाओ, अपनी हिम्मत से चलाओ, अपनी शक्तियों के सहयोग से चलाओ, अपने उल्लास से उन्हें चलाओ, ऐसी वो आत्मा है, कमजोर आत्मा है, तो हम में बहुत ज्यादा पावर चाहिए फिर अगर उनको देनी है तो। और कोई बात है? हाँ हो गया ना, हो गया हो गया, तो बीच में कहीं चले गए थे इसका मतलब आप, इससे ये सिद्ध हो रहा है अच्छा तो साथ साथ चल गए होंगे लोग, कौन सी
पावर बढ़नी है आता।
हाँ
तो अपना भाई विशाल में एक भाई को दिखाने जाता था, तो भाई तो जग जाता था, वो जग के बाथरूम में खड़ा था जब तक वो जाता नहीं वापस, नहीं खड़ा था आगे फिर हो जाता था वो आगे तो कटिया की
सूरज भाई ने भी एक बार उदाहरण दिया था ना, एक बहन दो बहनें सेंटर पर रहती है, तो एक बहन बहुत तीव्र पुरुषार्थी है, 2 बजे उठ जाती है, दूसरी बहन सारा दिन भर काम करती है, अभी जो 2 बजे उठती है उसको कुछ काम तो है नहीं खास, तो वो 2 बजे उठ जाती है और उसकी ये भावना है कि ये दूसरी भी उठे, तो वो क्या करती है सबसे पहले बाथरूम में जाके नल चालू कर देती जोर से ताकि उसकी आवाज से ये उठे, फिर भी नहीं उठती है, और बर्तन बिर्तन बजाती है थोड़ा सा फिर भी नहीं उठती है, तो फिर योग करना चालू करती है ये तो अपना 2 बजे से, तो और फिर जब 4 बज जाते फिर तो उससे रहा नहीं जाता, फिर उसके बेड के सामने आके उसको दृष्टि देना चालू करती है ताकि वो उठ जाए, तो ये जो बेटी जो सोई है वो तो और अच्छे से सोती है फिर तो वो अभी वो बहन क्या सोचती है कि देखो ये बहन उठ तो जाती है पर इसको नींद आती रहती है, तो क्या मतलब उससे तो मैं अच्छी, हाँ कम से कम सोई तो हूँ ताकि दिन भर सेवा करूँ, ये तो ना सेवा करती है ना तो योग वरदान हमने बोल दिया ना संगठन की शक्ति का, कोई भी वरदान ये होता है ना उसको स्प्लिट करना तो ये वो अच्छे से याद रहता है, इंजीनियर ग्रुप बहुत बड़ा है वो तो मैंने जानबूझ के पढ़ा नहीं, वो पढ़े तो ये डॉक्टरों की बातें भूल जाएंगी, इधर की इधर आ जाएगी, वो बड़ा ग्रुप है एक, वो शायद आ जाएगा कहीं और मुरली में कहीं आ जाएगा कहीं ना कहीं, राजू भाई उसको लगा देंगे, इधर से उधर कॉपी पे कट पेस्ट। और कोई पॉइंट रहेगी ये मुरली की? तो सत्यवादी, स्वच्छता, बैलेंस, हाँ वो भी एक पॉइंट रह गई है कि जो आधार मूर्त है वो मजबूत है। वो एक प्रश्न पूछा है वहां पर, केवल आधार मूर्त जो है वो मजबूत रहने चाहिए, वो जो सामने है लड़ाई में है उनके लिए। तो हम सब लड़ाई के मैदान में, विश्व कल्याण के लड़ाई के मैदान में, विश्व सेवा के मैदान में, तो डरपोक नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, निर्भीक, निडर। हार जीत का उनके ऊपर डिपेंड, डायरेक्टर की हार जीत उनके ऊपर डिपेंड, डायरेक्टर बैकबोन है। हाँ, इसके लिए हम डायरेक्ट लड़ाई के मैदान में, और दूसरों को अनुभव कराना ये एक बात है, और श्रेष्ठ चरित्र से चित्र दिखाना ये भी एक बात है। और डॉक्टरों का ये सारा जो बताया है कि किसी के पुराने संस्कार को सेकंड में परिवर्तन करना, दृष्टि से परिवर्तन करना, उनको अनुभव कराना, खुशी और दुआएं, और जो कहा क्या भावना, हल्का रहना, सफल होना, सफल तभी हो सकते हैं, सहज योगी कर्मयोगी की अवस्था जो है, लोक लाज, ये संसार की लोक लाज की जो जितनी परवाह है वो इधर की हो। और कमांडर, ये पूरी रूहानी सेना ही है, टाइटल है मुरली का। और कमांडर, सेनानी, सेनानी अर्थात स्वतंत्रता सेनानी होता है ना, वहां यूज किया जाता है वो वर्ड। अच्छा ये हो गया। और एक हफ्ते में कुछ पावरफुल स्लोगन, हाँ बोलो, मुझे याद नहीं स्लोगन। यथार्थ और युक्ति युक्त कर्म, क्या वही पवित्र आत्मा है, इधर इतना ज्यादा है कि छोटा मोटा। और विनाश की एक अच्छी बात आई थी ना कुछ दिन पहले, जैसे बांस का जंगल, बांस के जंगल में आग लग जाती है तो सारा भस्म हो जाता है और वहां पानी भी नहीं होता है, वैसे ये सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। और बाप कहते हैं नो नथिंग न्यू, और राजाई तो स्थापन होनी ही है, चाहे इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता है। सूरज भाई ने उस दिन उसी पे क्लास करा है, एक राजाई अगर देखा जाए, एक शब्द पकड़ा है राजा ही, और उसका विस्तार किया, फिर उसमें अनुभव डाल दिए बहुत सारे। ऐसे है ना, एक ही शब्द ले लिया बस राजा ही, अब राज्य स्थापन करने में क्या क्या होता है इसका बहुत सारा विस्तार किया जा सकता है। दूसरे दूसरे इतने सारे धर्म है, वो जब धर्म स्थापन हो रहे थे तो क्या क्या कठिनाई आई। अगर इस्लाम धर्म को देखा जाए तो ये सारे धर्मों में एकमात्र ऐसा धर्म है कि जिसमें सबसे ज्यादा विरोध हुआ, सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ, इतने विरोधी थे मोहम्मद के, इतने विरोधी थे कि इतने घर, कितनों के घर जला दिए लोगों ने, जो जो मोहम्मद के पैरोकार है, जो जो मोहम्मद को फॉलो करने वाले, उनको एक 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 को पकड़ के सूली पे चढ़ा दिया गया। इतना भयंकर विरोध हुआ है इस धर्म का, फिर भी इतना दबाने की कोशिश की है, जितने आजू बाजू के ईरान इराक वाले थे, अरब में आया ना ये मक्का मदीना अरब में, तो आजू बाजू के जितने हैं सब ने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, इसके बावजूद भी धर्म की स्थापना तो होनी ही थी, और वो हुई और वो फैला, कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे जैसे वो हुआ वैसे ये भी होगा, इसमें चाहे कोई कुछ भी करे धर्म की स्थापना तो होनी ही है। हाँ वो इधर इधर भी देखो तो शुरुआत से कितने सारे विरोधी है, और जितना विरोध होता है उतना ही वो और शक्तिशाली बनता है, संस्था व्यक्ति दोनों, संस्था भी और व्यक्ति भी। और उसकी एक रीति से पब्लिसिटी भी हो जाती है फ्री में, कहीं न्यूज़पेपर में देने की जरूरत नहीं, भाई हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था है, वो अपने आप यहाँ गड़बड़ हो रही है, मतलब हो गया पहला। और ज्यादा इस तरह से, हर घड़ी हर दिन जास्ती जास्ती कल्याण, हर दिन तुम्हारा होते रहता है, जो जितना जास्ती बाप की याद में रहता है उतना वो कल्याणकारी है उसके लिए। और
बाबा ने कहा कोई भी भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख देना ये तो ईश्वरीय बच्चों का काम नहीं है।
कौन से ईश्वरीय बच्चों का
हाँ,
काम नहीं?
ईश्वरीय
हाँ,
काम
किसी को दुख देना, अभिकर्म करना, पतित के हाथ का भोजन खाना, ये तो मुरलियों में आया अभी।
नहीं।
वरदान, हाँ हाँ देह पहली रचना है मास्टर रचता की, उसमें क्या क्या अनुभव कराओ दूसरी आत्माओं की, जो भी संपर्क में आया स्नेह सबसे पहले, फिर अब दातापन अपनापन सुख शांति हिम्मत उल्लास उमंग ये सब का अनुभव बता, ये सारी चीजें उनको अनुभव करो। और वरदान और एक बहुत अच्छा वरदान था, वो मुझे बोल रहा है 2-3 दिन पहले। हाँ स्नेह का हो गया ना, ये और एक अच्छा वरदान अंतर्मुक्त। हाँ वो 3 भाषा है, रूहानी भाषा है, संकल्प की भाषा, भावना की भाषा और नैनों की भाषा। अंतर्मुखी स्थिति, योग युक्त अंतर्मुखी स्थिति बनाने के लिए ये 3 चीजें चाहिए। ये 3 अलौकिक भाषा है, 3 शक्तिशाली भाषा है, रूहानी भाषा है, रूहानी योगी आत्मा की भाषा है। ये 3 भाषा पावरफुल, पावरफुल भाषा मतलब शक्तिशाली हुई। और भी कुछ? और एक ऐसा है कि ज्ञान का जितना चिंतन करते हैं तो व्यर्थ स्वतः ही मतलब हम मुक्त होते रहते, उतना समय तो हम व्यर्थ से मुक्त है, कम से कम उतना, जो जितना हम ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं उतना समय हम व्यर्थ से मुक्त है। टॉपिक लो या पर वो टॉपिक निकालोगे कैसे? अभी हमारे पास क्या है, वो जो शास्त्र जो है उसमें एक ही टॉपिक वो रोज रोज पढ़ते रहते हैं। हमारे पास मुरली है जिसमें एक ही मुरली में 50 टॉपिक 40 टॉपिक आ जाते हैं खाली, उसमें केवल पढ़ना और खुश होने की बात नहीं है। कोई एक टॉपिक उसमें आया तो उस टॉपिक को वहां से निकालना और उसको अलग रखना थोड़ा। पहले तो 3-4 टॉपिक निकाल के चाहे मोबाइल में ही सेव कर दो उसको कि ये टॉपिक है आज के मुरली के, अभी इसको बाजू में रख दिया, मुरली हो गई बाजू में, अभी ये जो टॉपिक है इस पे फोकस करना और उसमें बाबा ने साथ साथ क्या बोला है। मैंने एक और चीज कर रखी है, ये जो मोबाइल है मेरा एक कोई दूसरा बहुत पुराना नंबर है जो बंद है वो भी व्हाट्सएप है, तो वो 2 लोगों का ग्रुप बनाया मैंने, मेरा और वो एक मृत नंबर दो ही नंबर, 2 का ही ग्रुप है। तो ये मुरली से जो भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स आती है यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट, मृत नंबर जो है ना उसमें पेस्ट करके रखा, मतलब जैसे उसको दिखा न्यू मुरली पॉइंट्स ग्रुप, 2 ही लोगों का ग्रुप है वो वो मेरा और उसका, बस उसमें तीसरा कोई नहीं है, 2 ही लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप में इधर से उसमें डाल देता हूँ, तो वो सारी नई नई जो पॉइंट्स है और उसको थोड़ा अलंकारिक थोड़ा सजा के अलग अलग करके, हाँ तो अलग 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 करके थोड़ा वो अच्छे से सजा के उसको किया ना, तो अभी ये रख दिया बाजू में, अभी खाली पॉइंट्स बचे हैं, तो खाली पॉइंट्स उतना ही, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा उसका विस्तार, नहीं तो पूरी मुरली में एक पॉइंट के ऊपर रुकना तो लगता है अभी और इतना बाकी है, अभी ये बाकी है, तो वो चिंतन होता नहीं। थोड़ा इधर से इसको हटा के या किताब में भी लिख सकते हो एक डायरी में कि ये आज नए 3 ही पॉइंट है नए, इसको हटाओ, अभी ये 3 पॉइंट का क्या है देखो, इसके ऊपर चिंतन करो, इसके ऊपर मनन करो। एक मुरली में था कि मैसेंजर कोई है ही नहीं, वो जो धर्म स्थापक है उनको मैसेंजर नहीं कहा जा सकता, अरे कितनी बड़ी बात कह दी, इतने बड़े बड़े मैसेंजर्स आए, पैगंबर नबी और ये सब आए, ये बाबा ने कहा कि कोई भी नहीं है। पढ़ने को तो बहुत साधारण सा वाक्य है पर जब हम उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है अरे ये सबको बाबा ने खारिज कर दिया, जैसे कोई भी नहीं है मतलब एक छोटी सी पॉइंट है पर चिंतन वाली पॉइंट है, एक एक मुरली की पॉइंट। जैसे कल की मुरली की शुरुआत हुई थी कि अब तक क्या कहा था, मुरली की शुरुआत ही वहां से थी कि अभी तक देह अभिमान नहीं, ऐसा कुछ अच्छा एक पॉइंट था, मतलब एक कुछ भी लो और उसका चिंतन करो तो ही बुद्धि उसमें लगे, नहीं तो बुद्धि क्या करती है किसने क्या किया, अप्राप्तियों का चिंतन ज्यादा करती है, सुविधाएं कौन कौन सी नहीं है, साधन कौन कौन से नहीं है हमारे पास उसकी चिंतन करती है, उसका चिंतन करती है, दूसरे हमसे ज्यादा सुखी कैसे है उसका चिंतन करती है, या हमारे पास क्या क्या नहीं है उसका चिंतन उसको ज्यादा है हम क्या क्या गवाया उसका चिंतन ज्यादा है, जो बाबा कह रहे हैं उसका चिंतन कम है, तो ये सारी चीजें होती है। इसके लिए किसी भी युक्ति से किसी भी विधि से जो आपको ठीक लगे चिंतन कर, हाँ तो उसके लिए क्यों नहीं चलता, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए चिंतन के लिए। चिंतन क्या है, एक चिंतन आपको दे दिया उसका उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है आपको, तो कैसे चिंतन हुआ, तो पहले जानकारी थोड़ी पता करनी पड़ेगी। चिंतन सबका नहीं हो, चिंतन उसी का व्यक्ति का चल सकता है कि इसको इसके बारे में और कुछ पता है बहुत सारी, जैसे उस दिन जो कहा मैसेंजर सब नहीं, आपको उसके मैसेंजर्स के बारे में कितना पता है, कितने हुए वो पैगंबर, उनका कुछ खबर ही नहीं है उनके बारे में, इसके लिए वो ज्ञान और ये ज्ञान को चिंतन के लिए कंपैरिजन चाहिए, कोई भी चीज के लिए कंपैरिजन चाहिए। तो जैसे उस दिन मुरली में श्राद्ध आया था, पितर आया था, तो ये पितर क्या होते हैं, श्राद्ध क्या होता है, वो पिंडदान क्या होता है, वो ब्राह्मण को भोजन क्या होता है, उसका थोड़ा जब तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड ही कुछ नहीं है तो चिंतन कहाँ से चलेगा। आप क्या करें, चिंतन करो, चिंतन क्या चिंतन करे, बुद्धि रुक जाती है। चिंतन तो तब होगा जब कुछ तो हाथ में मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल आपके पास जितना ज्यादा होगा तो चिंतन चलेगा, उसका बैकग्राउंड आपको पता चाहिए तो चिंतन चलेगा, नहीं तो चिंतन कहाँ से चलने वाला है, चिंतन चलता ही नहीं है। पहले से बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो इसके लिए चिंतन अच्छा होता है, इसके लिए पढ़ना जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। या उसकी चर्चा, चर्चा तो बात की स्टेप है, हम खाली बता रहे जो हमारे पास है, उसके पहले बैकग्राउंड में बहुत कुछ चालू रहना चाहिए, छोटी छोटी। जैसे उस दिन शैलेंद्र भाई पूछ रहे थे कि ये कौन सा ताउस तख्त क्या होता है, अभी कितनी बार आता है वो शब्द, पर आया और चले गए, पर जब हम रुकते हैं कि भाई ये कुछ और तो नहीं है, तो वहां फिर चिंतन चलता है, वहां हम रुकते हैं
नहीं।
हाँ तो इसका क्या, मैंने आपको बोला चिंतन करो ताउसी तख्त पर, क्या चिंतन करूंगा, ताउस दिल के ताउस तख्त पर तू, वो गीत है ना, दिल के ताउस तख्त पर तू बाबा, वो
सारा
बस वो जब आप उसके बारे में पढ़ोगे कि भाई ताउसी तख्त क्या होता है और बाबा ये क्यों कह रहा है, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार मुरली में आता है, दिल्ली दरबार क्या होता है, कब था, कि कौन लगाता था, तब वो उसका थोड़ा बैकग्राउंड पता चले, क्योंकि बाबा की मुरली में आसपास जो भी कुछ कुछ होता था वो सारा उसमें आ जाता था। खुदाई खिदमतगार वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में, खान अब्दुल गफार खान, तो तुम उसको खुदाई खिदमतगार, वो विनोबा भावे ने उधर सर्वोदया लीडर चालू किया, तो बाबा ने कहा मैं सर्वोदया लीडर हूँ जो संसार में होते रहता है वो मैं हूँ या तुम हो। तो ये हमको अगर बैकग्राउंड पता है तो ही चिंतन चलता है, नहीं तो चिंतन का कोई स्कोप नहीं, फिर खाली एक ही चीज हाथ में रह जाती है, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनो और खुश हो बस, जहाँ पहले 10 साल पहले थे अभी भी वही, नए 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 पॉइंट्स और नए 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 चिंतन। सौभाग्यशाली, अरे क्या सौभाग्यशाली, और उसके बारे में थोड़ा और पढ़ो, और कौन कौन सी मुरलियों में निकालो या संसार की चीजों से निकालो। हाँ मतलब ये सारी चीजें, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और कमलेश भाई इधर ही है तो आज यहीं रोकते हैं।